चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को उपदेश। इस विराट जगत की सृष्टि करने के पूर्व भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की और वैदिक ज्ञान प्रकट किया। ठीक उसी तरह से महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए रूप गोस्वामी के हृदय को आध्यात्मिक शक्ति से संचारित किया। श्रील रूप गोस्वामी इस शक्ति से वृंदावन में कृष्ण की उन लीलाओं को पुनरुज्जीवित कर सके जो प्रायः विस्मृत हो चुकी थी। इस तरह उन्होंने सारे विश्व में कृष्ण भावना अमृत का विस्तार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। राम केली गांव में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद रूप तथा सनातन दोनों भाई अपने अपने घर लौट गए। दोनों भाइयों ने एक उपाय सोचा जिससे वे अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग सके। इसके लिए उन्होंने दो ब्राह्मण नियुक्त किए और उन्हें प्रचुर धन दिया। ब्राह्मणों ने धार्मिक कृत्य संपन्न किया और कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जिससे दोनों भाइयों को शीघ्र ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सके। इसी समय श्री रूप गोस्वामी अपने साथ नावों में प्रचुर मात्रा में धन लेकर घर लौटे। श्री रूप गोस्वामी ने घर लाए गए धन का बंटवारा कर दिया। उन्होंने 50% धन ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को दान में दे दिया और 25% अपने संबंधियों को दिया। उन्होंने अपनी चौथाई संपत्ति एक सम्मानित ब्राह्मण के पास रख दी। इसे उन्होंने अपनी निजी सुरक्षा के लिए रखा क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वे कहीं कोई कानूनी झंझट में न फंस जाएं। उन्होंने 10,000 सिक्के एक स्थानीय बंगाली बनिए के यहाँ जमा कर दिए थे जिनका खर्च बाद में श्री सनातन गोस्वामी ने किया। श्री रूप गोस्वामी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट गए हैं और जंगल से होकर वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने यह पता करने के लिए दो व्यक्ति जगन्नाथपुरी भेजे कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए कब प्रस्थान करेंगे। श्री रूप गोस्वामी ने इन दोनों व्यक्तियों से कहा, तुम लोग जल्दी लौट कर मुझे बताओ कि वे कब प्रस्थान करेंगे, तब मैं समुचित व्यवस्था करूंगा। गौड़ देश में रहते हुए सनातन गोस्वामी सोच रहे थे, नवाब मुझसे अत्यंत प्रसन्न है, मेरा निश्चित रूप से कर्तव्य बनता है। यदि नवाब किसी तरह मुझसे नाराज हो जाए तो मुझे मुक्ति मिल सकती है, यही मेरा निश्चय है। स्वास्थ्य खराब होने का बहाना करके सनातन गोस्वामी घर पर ही रहे। इस तरह उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और राज दरबार नहीं गए। उनके लोभी क्लर्क तथा सचिवालय के कर्मचारी सरकारी काम काज पूरा कर लेते किंतु सनातन घर पर रहते और शास्त्रों की चर्चा करते रहते। श्री सनातन गोस्वामी 20-30 विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवत पर चर्चा चलाते थे। एक दिन जब सनातन गोस्वामी विद्वान ब्राह्मणों की सभा में श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे थे, तब बंगाल का नवाब तथा एक अन्य व्यक्ति सहसा वहां आ गए। ज्यों ही सभी ब्राह्मणों तथा सनातन गोस्वामी ने नवाब को आते देखा, वे सभी खड़े हो गए और उन्होंने आदर पूर्वक उसे बैठने के लिए आसन दिया। नवाब ने कहा, मैंने तुम्हारे पास मेरा वैद्य भेजा था, उसने सूचना दी है कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, उसके विचार से तुम पूर्ण स्वस्थ हो। मैं अनेका अनेक कार्यों को पूरा करने के लिए तुम पर निर्भर हूँ, किंतु तुम हो कि अपना सरकारी काम काज छोड़कर घर पर बैठे रहते हो, तुमने मेरा सारा काम काज बिगाड़ दिया है, आखिर तुम चाहते क्या हो, कृपया मुझसे साफ साफ कहो। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, अब आप मुझसे किसी प्रकार के कार्य की आशा न करें, कृपा करके किसी दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लें जो आपकी व्यवस्था देख सके। सनातन गोस्वामी से नाराज होकर नवाब ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई लुटेरे जैसा व्यवहार कर रहा है, तुम्हारे बड़े भाई ने अनेक जीवों का वध करके समूचे बंगाल को नष्ट कर दिया है, अब तुम मेरी सारी योजनाओं को नष्ट कर रहे हो। सनातन गोस्वामी ने कहा, आप बंगाल के सर्वोच्च शासक हैं और पूर्णतया स्वतंत्र हैं, जब भी कोई व्यक्ति त्रुटि करता है आप उसे उसी के हिसाब से दंड देते हैं। यह सुनकर बंगाल का नवाब उठ खड़ा हुआ और वह अपने घर लौट गया। उसने सनातन गोस्वामी को बंदी बनाए जाने का आदेश दिया, जिससे वे कहीं जा न सके। उस समय नवाब उड़ीसा प्रांत पर आक्रमण करने जा रहा था और उसने सनातन गोस्वामी से कहा, तुम मेरे साथ चलो। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, आप तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कष्ट देने उड़ीसा जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ जाने में अशक्त हूँ। नवाब ने फिर सनातन गोस्वामी को बंदी बनाया और जेल में डाल दिया। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए चल पड़े। दो व्यक्तियों ने जो महाप्रभु के प्रस्थान का पता लगाने जगन्नाथपुरी गए थे, लौटकर रूप गोस्वामी को सूचित किया कि महाप्रभु पहले ही वृंदावन के लिए चल चुके हैं। इन दोनों संदेश वाहकों से यह संदेश पाकर रूप गोस्वामी ने तुरंत सनातन गोस्वामी को यह पत्र लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए चल चुके हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को अपने पत्र में लिखा, हम दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तुम भी किसी तरह छूट कर हमसे मिलो। रूप गोस्वामी ने श्रील सनातन गोस्वामी को यह भी सूचित किया, मैं वहां एक बनिए के पास 10,000 मुद्राएं छोड़ आया हूँ, तुम उस धन का उपयोग अपने आप को जेल से छुड़ाने में करो, किसी तरह से छूट कर वृंदावन आओ। यह लिखकर दोनों भाई रूप गोस्वामी तथा अनुपम श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने चले गए। रूप गोस्वामी का छोटा भाई महान भक्त था, जिसका सच्चा नाम श्री वल्लभ था, किंतु उसका नाम अनुपम मल्लिक रख दिया गया। श्रील रूप गोस्वामी तथा अनुपम मल्लिक प्रयाग गए और यह समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए कि श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर हैं। प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव मंदिर में दर्शन करने गए और लाखों लोग उनसे मिलने मात्र के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाप्रभु के पीछे चलने वालों में से कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ नाच और गा रहे थे। उनमें से कुछ कृष्ण कृष्ण पुकार कर भूमि पर लौट रहे थे। प्रयाग गंगा तथा यमुना इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। यद्यपि ये नदियां अपने जल से प्रयाग को जलमग्न नहीं कर सकी थी, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की लहरों से पूरे भूभाग को अप्लावित कर दिया। बड़ी भीड़ देखकर दोनों भाई एकांत स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन पाकर प्रेमाविष्ट हो गए। महाप्रभु हरि नाम का उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे थे, प्रेमावेश में नाचते हुए और अपनी भुजाएं उठाए हुए उन्होंने हर एक से हरि हरि बोलने के लिए कहा। हर व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर अत्यंत विस्मित था। मैं महाप्रभु की प्रयाग लीलाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण से जान पहचान हो गई थी और उस ब्राह्मण ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। वह उन्हें अपने घर ले गया। जब महाप्रभु उस दाक्षिणात्य ब्राह्मण के घर एकांत में बैठे थे, तब रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ अनुपम मल्लिक उनसे भेंट करने वहां आए। दूर से महाप्रभु को देखकर दोनों भाइयों ने अपने दांतों में तिनकों के दो गुच्छे दबा लिए और उन्हें नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर पड़े। दोनों भाई प्रेमाविष्ट हो गए और अनेक संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए बारंबार उठते और गिरते। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी को देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने उनसे कहा, उठो उठो हे प्रिय रूप, मेरे पास आओ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण की कृपा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम दोनों को भौतिक भोग के कुएं से बाहर निकाल लिया है। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई भले ही संस्कृत वैदिक साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान क्यों न हो, यदि उसकी भक्ति शुद्ध नहीं है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जा सकता। भले ही कोई व्यक्ति चंडाल परिवार में जन्मा हो, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि वह मेरा शुद्ध भक्त है, जिसमें सकाम कर्म या मानसिक तर्क वितर्क को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, उसे सभी प्रकार से सम्मान दिया जाना चाहिए और वह जो कुछ भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा भक्त मेरे ही समान पूजनीय है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक पढ़कर दोनों भाइयों का आलिंगन किया और अहेतु की कृपा करके उनके सिरों पर अपने पांव रखे। महाप्रभु की अहेतु की कृपा पाकर दोनों भाइयों ने हाथ जोड़े और अत्यंत दीन भाव से महाप्रभु की निम्नलिखित स्तुति की। हे परम दयालु अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने श्रीमती राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है और आप कृष्ण के शुद्ध प्रेम का उदारता से वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। हम उन दयालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने अज्ञान से मदोन्मत तीनों लोकों को बदल डाला है और उन्हें भगवत प्रेम के कोष के अमृत से उन्मत बनाकर रुग्ण अवस्था से उनकी रक्षा की है। हम उन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की शरण ग्रहण करते हैं जिनके कार्यकलाप अद्भुत हैं। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी बगल में बैठाया और उनसे पूछा, सनातन का क्या समाचार है? श्री रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, सनातन को हुसैन शाह की सरकार ने अब बंदी बना लिया है। यदि आप कृपा करके उसे बचाएं, तो वह उस बंधन से छूट सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा, सनातन उसके कारागार से छूट चुका है और वह शीघ्र ही आकर मुझसे मिलेगा। तब ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे भोजन ग्रहण करें। उस दिन रूप गोस्वामी भी वहीं रहे। बलभद्र भट्टाचार्य ने दोनों भाइयों को भी भोजन करने को कहा। उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की थाल से बचा हुआ भोजन प्रदान किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गंगा तथा यमुना के संगम के निकट त्रिवेणी नामक स्थान में अपना निवास स्थान चुना। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने महाप्रभु के निकट ही अपना निवास स्थान चुना। उस समय श्री वल्लभ भट्ट आढ़ा इल ग्राम में रह रहे थे। जब उन्होंने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो वे उनका दर्शन करने उनके स्थान पर गए। वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। इसके बाद कुछ समय तक वे कृष्ण कथाओं के विषय में विचार विमर्श करते रहे। जब वे कृष्ण कथा के विषय में बातें कर रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यधिक प्रेमावेश का अनुभव हुआ, किंतु उन्होंने अपना भाव रोका क्योंकि वल्लभ भट्ट के समक्ष उन्हें संकोच हो रहा था। यद्यपि महाप्रभु ने बाहर से अपने आप को रोका, किंतु उनके भीतर ही भीतर प्रेमावेश उमड़ने लगा। उसको रोक पाना संभव नहीं था। वल्लभ भट्ट यह पहचान कर आश्चर्यचकित थे। इसके बाद वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन पर बुलाया और महाप्रभु ने रूप तथा वल्लभ दोनों भाइयों का उनसे परिचय कराया। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों ने अत्यधिक दीनतावश दूर से ही भूमि पर गिरकर वल्लभ भट्ट को प्रणाम किया। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनकी ओर बढ़े, तो वे और दूर चले गए। रूप गोस्वामी ने कहा, मैं अछूत और अत्यंत पापी हूँ, कृपा करके मुझे न छुए। इस पर वल्लभ भट्टाचार्य को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने रूप गोस्वामी का यह विवरण उन्हें दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उसे मत छुए क्योंकि वह अत्यंत निम्न जाति का है। आप तो वैदिक नियमों के अनुयायी हैं और अनेक यज्ञों को संपन्न करने में अत्यंत अनुभवी हैं। आप तो कुलीन भी हैं। दोनों भाइयों को कृष्ण नाम का निरंतर जप करते सुनकर वल्लभ भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के संकेतों को समझ सके। वल्लभ भट्टाचार्य ने कहा, जब ये दोनों निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन जपते रहते हैं तो फिर ये अस्पृश्य कैसे हो सकते हैं, उल्टे ये सर्वोत्तम हैं। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने यह श्लोक सुनाया, हे प्रभु, जिस व्यक्ति की जीभ पर आपका पवित्र नाम सदा रहता है वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है, भले ही वह चंडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो और भौतिक दृष्टि से अत्यंत नीच व्यक्ति हो, फिर भी वह यशस्वी है। यह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे वेदोक्त सारे तप तथा यज्ञ संपन्न किया हुआ मान लेना चाहिए। वह पहले से सारे तीर्थों में स्नान कर चुका होता है, वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका होता है और वास्तव में आर्य होता है। वल्लभ भट्ट को भक्त के विषय में शास्त्र से उद्धरण देते सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। महाप्रभु ने स्वयं उनकी प्रशंसा की और वे भगवत प्रेम से आविष्ट होकर शास्त्रों से अनेक श्लोक सुनाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति प्रज्वलित अग्नि की तरह विगत जीवन के सारे पापों के फलों को जला देती है। जो व्यक्ति उस भक्ति के कारण ब्राह्मण के शुद्ध गुणों से युक्त है वह निम्न कुल में जन्म लेने जैसे पाप कर्मों के परिणामों से निश्चित रूप से बच जाता है, भले ही वह चंडाल के परिवार में क्यों न जन्मा हो। विद्वान उसे मान्यता प्रदान करते हैं, किंतु वैदिक ज्ञान में पंडित व्यक्ति यदि वह नास्तिक हो तो उसे मान्यता नहीं मिलती। भक्तिहीन व्यक्ति के लिए उच्च कुल या राष्ट्र में जन्म लेना शास्त्र ज्ञान व्रत तप तथा वैदिक मंत्रोच्चार वैसे ही हैं जैसे मृत शरीर को गहने पहनाना। ऐसे गहने केवल सामान्य जनता के मनोकल्पित आनंद की ही तुष्टि करने वाले होते हैं। महाप्रभु के प्रेमावेश को देखकर वल्लभ भट्टाचार्य अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। वे महाप्रभु के भक्ति विषय ज्ञान तथा उनके शारीरिक सौंदर्य और प्रभाव से भी आश्चर्यचकित थे। तब वल्लभ भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके संगियों को नाव में चढ़ाया और उन्हें भोजन कराने के लिए अपने स्थान पर ले गए। यमुना नदी पार करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चिकना श्यामल जल देखा तो वे तुरंत ही प्रेमावेश में विह्वल हो गए। यमुना नदी को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने हुंकार की और पानी में कूद पड़े। यह देखकर सारे लोग भयभीत होकर कांपने लगे। उन्होंने शीघ्रातिशीघ्र श्री चैतन्य महाप्रभु को पकड़ा और जल से बाहर निकाला। नाव के ऊपर आकर महाप्रभु नृत्य करने लगे। महाप्रभु के भार से नाव हिलने डुलने लगी, उसमें जल भरने लगा और डूबने को हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य के समक्ष अपने आप को यथा संभव संभालने का प्रयास किया और अपने आप को शांत रखना चाहा, किंतु उनका प्रेम भाव रोके न रुका। परिस्थिति देखकर महाप्रभु शांत हो गए, जिससे नाव अडाइल के किनारे पहुंचकर लग सकी। महाप्रभु की कुशलता के लिए भयभीत वल्लभ भट्टाचार्य उनके साथ रहे। महाप्रभु के स्नान का प्रबंध करने के बाद भट्टाचार्य उन्हें अपने घर ले गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वल्लभ भट्टाचार्य के घर पहुँचे तब अत्यंत प्रसन्न होने के कारण उन्होंने महाप्रभु को सुंदर आसन प्रदान किया और स्वयं उनके चरणों को धोया। तब वल्लभ भट्टाचार्य तथा उनके पूरे परिवार ने वह जल अपने सिरों के ऊपर छिड़का। फिर उन्होंने महाप्रभु को नया कौपीन तथा बाह्य वस्त्र दिए। वल्लभाचार्य ने सुगंध, अगुरु, फूल तथा दीप के द्वारा बड़ी सजदज से महाप्रभु की पूजा की और बड़े ही आदर के साथ महाप्रभु के रसोइये बलभद्र भट्टाचार्य को भोजन पकाने के लिए राजी किया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़ी ही सावधानी से तथा स्नेह से भोजन परोसा गया। रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ दोनों भाइयों को भी भोजन दिया गया। वल्लभ भट्टाचार्य ने सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी को महाप्रभु के भोजन का शेष दिया और फिर कृष्ण दास को दिया। तब महाप्रभु को मुख शुद्धि के लिए मसाला दिया गया। इसके बाद उन्हें शयन कराया गया और वल्लभ भट्टाचार्य ने अपने हाथों से उनके पांव दबाए। जब वल्लभ भट्टाचार्य उनके पांव दबा रहे थे तब महाप्रभु ने उनसे जाकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। वे प्रसाद ग्रहण करके पुनः महाप्रभु के चरण कमलों पर लौट आए। उस समय रघुपति उपाध्याय आया जो तिरुहिता जिले का था। वह बहुत बड़ा विद्वान, महान भक्त तथा सम्मानित व्यक्ति था। रघुपति उपाध्याय ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना की और महाप्रभु ने यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, सदैव कृष्ण भावना मय बने रहो। रघुपति उपाध्याय महाप्रभु का आशीर्वाद सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। इसके बाद महाप्रभु ने उससे कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा। जब रघुपति उपाध्याय से कृष्ण का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उसने कुछ श्लोक सुनाए जो उसने कृष्ण लीला के विषय में स्वयं लिखे थे। उन श्लोकों को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम से विह्वल हो गए। रघुपति उपाध्याय ने सुनाया, इस भौतिक अस्तित्व से भयभीत लोग वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, कुछ स्मृति की पूजा करते हैं जो वैदिक साहित्य के उप सिद्धांत हैं, तो कुछ महाभारत की, किंतु मैं तो कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूँ, जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खेल रहे हैं। जब महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से और अधिक सुनाने के लिए कहा तो उसने तुरंत ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया। मैं किससे कहूँ और कौन मेरी बातों में विश्वास करेगा? यदि मैं कहूँ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण यमुना नदी के तट पर गोपियों के साथ कुंजों में विहार कर रहे हैं, भगवान इस तरह से अपनी लीलाओं को प्रदर्शित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से अनुरोध किया कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में कहता रहे। इस तरह महाप्रभु प्रेमाविष्ट हो गए और उनका मन तथा शरीर शिथिल पड़ गए। जब रघुपति उपाध्याय ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव लक्षण देखे तो उसे यह निश्चित हो गया कि महाप्रभु मनुष्य नहीं अपितु साक्षात कृष्ण हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुपति उपाध्याय से पूछा, तुम्हारे मत के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हस्ती कौन है? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, भगवान श्याम सुंदर ही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हैं। कृष्ण के समस्त धामों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? इसके उत्तर में रघुपति उपाध्याय ने कहा, मधुपुरी अर्थात मथुरा धाम निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, कृष्ण की बाल्यावस्था, पौगंडावस्था तथा किशोरावस्था, इन तीनों में से तुम किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हो? रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, किशोर अवस्था सर्वश्रेष्ठ है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त रसों में तुम किस रस को सर्वश्रेष्ठ मानते हो? तो रघुपति उपाध्याय ने उत्तर दिया, माधुर्य रस ही सर्वोपरि है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने निश्चित रूप से उच्च कोटि के निर्णय दिए हैं। यह कह कर वे लड़खड़ाते स्वर में पूरा श्लोक सुनाने लगे। श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ रूप है, मथुरापुरी सर्वश्रेष्ठ धाम है, कृष्ण की केशोरावस्था सदा ध्यान करने योग्य है और माधुर्य रस ही सर्वश्रेष्ठ रस है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमावेश में रघुपति उपाध्याय का आलिंगन किया। रघुपति उपाध्याय भी प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुपति उपाध्याय को नाचते देखकर वल्लभ भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे अपने दोनों पुत्रों को ले आए और उन्हें महाप्रभु के चरण कमलों में डाल दिया। यह सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सारे ग्रामवासी उनका दर्शन करने के लिए आए। उनका दर्शन करने मात्र से वे सभी कृष्ण भक्त बन गए। गांव के सारे ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण देने के लिए उत्सुक थे, किंतु वल्लभ भट्टाचार्य ने उन सब को ऐसा करने से मना कर दिया। तब वल्लभ भट्ट ने श्री चैतन्य महाप्रभु को आधाइल में न रखने का निश्चय किया, क्योंकि महाप्रभु प्रेमावेश में यमुना नदी में कूद पड़े थे। इसलिए उन्होंने महाप्रभु को प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। वल्लभ भट्ट ने कहा, जिसकी इच्छा हो वह प्रयाग जा सकता है और महाप्रभु को निमंत्रण दे सकता है। इस तरह वे महाप्रभु को अपने साथ लेकर प्रयाग के लिए चल पड़े। वल्लभ भट्टाचार्य यमुना नदी से बचने के लिए महाप्रभु को नाव में चढ़ाकर गंगा नदी से उनके साथ साथ प्रयाग गए। प्रयाग में भारी भीड़ होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट गए। वहीं पर उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और भक्ति योग दर्शन में उनमें शक्ति का संचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व तथा रस तत्व की चरम सीमा की शिक्षा दी, जिसकी चरम परिणति राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम में होती है। अंत में उन्होंने रूप गोस्वामी से श्रीमद् भागवत के चरम सिद्धांत कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जितने भी सिद्धांत सुने थे उन सब को रूप गोस्वामी को सिखलाया और उन्हें भली भांति शक्ति प्रदान की, जिससे वे उन्हें समझ सके। रूप गोस्वामी के हृदय में प्रवेश करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें समस्त सत्यों के सिद्धांतों के तत्व से समझने की शक्ति प्रदान की। महाप्रभु ने उन्हें अनुभवी भक्त बना दिया, जिनके निर्णय गुरु शिष्य परंपरा के निर्णयों से अनुरूप थे। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने शक्ति प्रदान की। शिवानंद सेन के पुत्र कवि कर्णपुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रोदय में श्री रूप गोस्वामी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के मिलन का विस्तार से वर्णन किया है। काल क्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। इन दिव्य लीलाओं की स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वे वृंदावन में यह कार्य संपन्न कर सके। श्रील रूप गोस्वामी प्रारंभ से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के प्रति अत्यंत आकृष्ट थे। इस तरह उन्होंने गृहस्थ जीवन से स्थायी रूप से वैराग्य ले लिया। श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई वल्लभ को श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यद्यपि महाप्रभु अपने दिव्य शाश्वत रूप में दिव्य पद को प्राप्त थे, किंतु प्रयाग में उन्होंने रूप गोस्वामी को कृष्ण के दिव्य भावमय प्रेम के विषय में बतलाया। फिर महाप्रभु ने बड़े प्रेम से उनका आलिंगन किया और उन्हें अपनी पूर्ण कृपा प्रदान की। श्रील स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र श्रील रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की हूबहू अनुकृति थे और वे महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की साक्षात मूर्ति होने के कारण रूप गोस्वामी स्वाभाविक रूप से अत्यंत सुंदर थे। उन्होंने महाप्रभु द्वारा स्थापित सिद्धांतों का सावधानी से पालन किया और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं की सही व्याख्या करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर इसीलिए अपनी कृपा दृष्टि डाली ताकि वे दिव्य साहित्य की रचना करके सेवा कर सके। इस तरह कवि कर्णपुर ने जगह जगह श्रील रूप गोस्वामी के गुणों का वर्णन किया है। उन्होंने इसका भी वर्णन किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी को अपनी अहेतुकी कृपा प्रदान की। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौट आता तो महाप्रभु के पार्षद उस व्यक्ति से प्रश्न करते। वृंदावन से लौटने वालों से वे पूछते, वृंदावन में रूप और सनातन कैसे हैं? संन्यास आश्रम में उनके कार्य कैसे हैं? वे किस तरह भोजन की व्यवस्था करते हैं? वे इस प्रकार से पूछते थे। महाप्रभु के पार्षद यह भी पूछते, रूप तथा सनातन किस तरह 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं? उस समय वृंदावन से होकर आने वाला व्यक्ति श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता। उन दोनों भाइयों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, वे वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। एक रात एक वृक्ष के नीचे तो दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे। श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घरों से कुछ भोजन मांग लाते हैं। वे सारे भौतिक भोग का परित्याग करके सूखी रोटी तथा भुने चने ही ग्रहण करते हैं। वे एकमात्र कमंडल लिए रहते हैं और पटी गुदड़ी ओढ़ते हैं। वे सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। वे अति उल्लास से नृत्य भी करते हैं। वे लगभग 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे केवल 1.5 घंटा सोते हैं और कुछ दिनों तो जब वे निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं तब बिल्कुल नहीं सोते। कभी वे भक्ति संबंधी दिव्य साहित्य की रचना करते हैं, तो कभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हैं और उन्हीं के विषय में चिंतन करने में अपना सारा समय लगाते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण रूप तथा सनातन गोस्वामियों के कार्यों के विषय में सुनते तो वे कहते, उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। श्रील रूप गोस्वामी ने स्वयं ही अपनी पुस्तक भक्ति रसा अमृत सिंधु 1.1.2 के मंगलाचरण में श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में लिखा है, यद्यपि मैं मनुष्यों में सबसे नीच हूँ और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु मुझे भक्ति विषयक दिव्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कृपा पूर्वक दी गई है। अतएव मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों की रचना करने का अवसर प्रदान किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में 10 दिन रहे और उन्होंने रूप गोस्वामी को आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए शिक्षा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतएव मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता, फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन कराने के लिए मैं उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूँ। इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं और वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। जीव की लंबाई तथा चौड़ाई बाल के अगले भाग के 1/10,000वें भाग के बराबर बतलाई जाती है। यह जीव की मूल सूक्ष्म प्रकृति है। यदि हम बाल के अगले भाग के 100 खंड करें, इनमें से 1 खंड लेकर फिर से उसके 100 भाग करें, तो वह सूक्ष्म भाग असंख्य जीवों में से एक के आकार के तुल्य होगा। वे सब चित्कण अर्थात आत्मा के कण होते हैं, पदार्थ के नहीं। यदि हम बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करें और इनमें से 1 भाग को लेकर पुनः उसके 100 भाग करें, तो वह 10,000वां भाग ही जीव की माप है। यह मुख्य वैदिक मंत्रों का निर्णय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, इन सूक्ष्म कणों में मैं जीव हूँ। हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं तथा संख्या में अनंत हैं, किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कणों के रूप में अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश रूप में स्वीकार किया जाए तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण के अधीन हैं। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाएं कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान हैं, तो वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाएं। यह निर्णय दोष पूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक हैं। यह तथ्य नहीं है। असंख्य जीवों के दो विभाग किए जा सकते हैं, चर तथा अचर। चर जीवों में पक्षी, जलचर तथा पशु आते हैं। यद्यपि जीवों में से मनुष्यों की संख्या अत्यल्प है, किंतु इस विभाग को और आगे विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि मलेच्छ, पुल्लिंद, बौद्ध तथा शबर जैसे अनेक असभ्य मानव हैं। मनुष्यों में जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं, उन्हें सभ्य माना जाता है। इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं और इन सिद्धांतों के विरुद्ध सभी तरह के पाप कर्म करते हैं। ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वैदिक ज्ञान के अनुयायियों में से अधिकांश सकाम कर्म की विधि का अनुसरण करते हैं और अच्छे तथा बुरे काम में अंतर करते हैं। ऐसे अनेक निष्ठावान सकाम कर्मियों में ऐसा कोई एक हो सकता है जो वास्तव में ज्ञानी हो? ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई एक वास्तव में मुक्त होता है और ऐसे लाखों मुक्त लोगों में से कृष्ण का शुद्ध भक्त ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, इसलिए वह शांत होता है। सकाम कर्मी भौतिक भोग चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं। अतः वे सभी कामी हैं और शांत नहीं हो सकते। हे महामुनि, अज्ञान से मुक्त लाखों पुरुषों में तथा सिद्धि प्राप्त लाखों सिद्धों में से कदाचित कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा भक्त ही वास्तव में पूर्णतया तुष्ट तथा शांत होता है। सारे जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार समूचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडलों को जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडलों को। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु का सान्निध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। जब किसी व्यक्ति को भक्ति का बीज प्राप्त हो जाता है, तब उसे माली बनकर उस बीज को अपने हृदय में बोकर उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि वह बीज को क्रमशः श्रवण तथा कीर्तन की विधि से सींचता है, तो वह बीज अंकुरित होने लगता है। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पास चली जाती है। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्ति लता पर व्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। हृदय में स्थित होने से तथा श्रवण कीर्तन द्वारा पीछे जाने से भक्ति लता अधिकाधिक बढ़ती जाती है। इस तरह इसे कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय प्राप्त हो जाता है, जो पर व्योम के सर्वोच्च क्षेत्र गोलोक वृंदावन में निरंतर वास करते हैं। यह लता गोलोक वृंदावन ग्रह में खूब बढ़ती है और यही इसमें कृष्ण प्रेम रूपी फल लगता है। यद्यपि माली भौतिक जगत में रहता है, किंतु वह नियमित रूप से श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता है। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। माली को चारों ओर बाड़ बनाकर लता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे अपराधों का शक्तिशाली हाथी भीतर न प्रवेश कर पाए। कभी कभी भक्ति लता के साथ साथ भौतिक भोग की इच्छाओं तथा भौतिक जगत से मुक्ति की लालसा की अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती हैं। ऐसी अवांछित लताओं की किस्में असंख्य हैं। भक्ति लता के साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं हैं। सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए लोगों के लिए निषिद्ध आचरण, कूटनीति, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, संसारी पूजा तथा प्रतिष्ठा, ये सभी अवांछित लताएं हैं। यदि भक्ति लता तथा अन्य लताओं में ठीक से भेद नहीं किया जाता, तो जल सींचने की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि भक्ति लता भर नहीं पाती है, जबकि अन्य लताएं हरी भरी होती जाती हैं। जैसे ही कोई बुद्धिमान भक्त मूल लता के पास अवांछित लता को बढ़ते देखे, तो उस लता को उसे तुरंत काट देना चाहिए। तब भक्ति लता रूपी असली लता ठीक से बढ़ती है और वह भगवत धाम लौट कर कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय पाती है। जब भक्ति का फल पक कर नीचे गिर जाता है, तब माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। वहां पर भक्त भगवान के कल्प वृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। वह बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का स्वाद लेता है और शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। गोलोक वृंदावन में भक्ति रूपी फल का आस्वादन ही जीवन की परम सिद्धि है। इस सिद्धि के आगे चार प्रकार की भौतिक सिद्धियां, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष तृण के समान हैं। जब तक कृष्ण के उस शुद्ध प्रेम की रंच मात्र भी सुगंध नहीं होती, जो हृदय के भीतर कृष्ण को वश में लाने की पूर्ण औषधि है, तब तक भौतिक सिद्धियां ब्राह्मण की पूर्णता, सत्य, शम, तितिक्षा इत्यादि, योगियों की समाधि तथा ब्रह्मानंद, ये सभी मनुष्य को अद्भुत लगते हैं। शुद्ध भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य में भगवत प्रेम उत्पन्न होता है। अतएव मैं शुद्ध भक्ति के कुछ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छानुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त को कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं करनी चाहिए। उसे न तो देवताओं की न ही संसारी व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे कृष्ण भावना अमृत से रहित किसी कृत्रिम ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहिए और कृष्ण भावना भावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगना चाहिए। उसे अपनी सारी विशुद्ध इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यों को अनुकूल रीति से संपन्न करने की यही विधि है। ये कार्य शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति ऐसी शुद्ध भक्ति करता है वह उचित समय आने पर कृष्ण के प्रति अपना मूल प्रेम विकसित कर लेता है। पंच रात्र तथा श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों में इन लक्षणों का वर्णन हुआ है। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में अपनी सारी इंद्रियों को लगाना। जब आत्मा भगवान की सेवा करता है तो उसके दो गौण प्रभाव होते हैं। मनुष्य सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से उसकी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। जिस तरह गंगा का स्वर्गीय जल अबाध गति से समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी तरह जब मेरे भक्त मेरा श्रवण मात्र करते हैं तो उनके मन मेरे पास आते हैं। मैं सबके हृदयों में वास करता हूँ। ये पुरुषोत्तम अर्थात परम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के लक्षण हैं। यह अहेतुकी होती है और किसी तरह रोके नहीं रुकती। मेरे भक्त मेरी सेवा करने की तुलना में सालोक्य, सारिष्टि, सामिप्य तथा सारूप्य इन मुक्तियों को मेरे देने पर भी स्वीकार नहीं करते। ऊपर बतलाया गया भक्ति योग जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और प्रत्यक्ष भक्ति के स्तर पर आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेमा भक्ति के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों न कर रहा हो। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये दो पिशाचिनियां हैं जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती हैं। जब तक ये पिशाचिनियां हृदय में रहती हैं, तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है। जब तक ये दोनों डायने हृदय में रहती हैं, तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं रहती। नियमित भक्ति करते रहने से मनुष्य क्रमशः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त होता है। जब यह अनुरक्ति प्रगाढ़ हो जाती है तब यही भगवत प्रेम कहलाती है। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा महाभाव बन जाते हैं। प्रेम के क्रमिक विकास की तुलना चीनी की विभिन्न अवस्थाओं से की जा सकती है। पहले गन्ने का बीज, फिर गन्ना, तब गन्ने का रस होता है। जब इस रस को उबाला जाता है तो प्रवाही शीरा बनता है जो ठोस बनकर गुड़, फिर चीनी, फिर मिश्री, कठोर मिश्री तथा चूसने की मिश्री प्रदान करता है। ये सारी अवस्थाएं मिलकर स्थाई भाव अर्थात भक्ति में सतत भगवत प्रेम कहलाती है। इन अवस्थाओं के अतिरिक्त विभाव तथा अनुभाव भी होते हैं। जब सात्विक तथा व्यभिचारी भावों के लक्षणों को उच्च स्तरीय प्रेम भाव से मिला दिया जाता है तब भक्त नाना प्रकार के अमृतमय स्वादों में कृष्ण प्रेम के दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। इनके स्वाद दही, मिश्री, घी, काली मिर्च तथा कपूर के मिश्रण के स्वाद के तुल्य हैं और मधुर अमृत की भांति स्वादिष्ट होते हैं। भक्त के अनुसार रति पांच प्रकार की होती है, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति तथा मधुर रति। ये पांच प्रकार की रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्त की विभिन्न अनुरक्तियों से उत्पन्न होती हैं। भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य रस भी पांच प्रकार के होते हैं। भगवान के साथ अनुभव किए जाने वाले प्रमुख रस पांच हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर। पांच प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त सात अप्रत्यक्ष या गौण रस होते हैं, जिन्हें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक तथा विभिन्न नाम से जाना जाता है। पांच प्रत्यक्ष रसों के अतिरिक्त सात अप्रत्यक्ष रस हैं, जिन्हें हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभिन्न तथा भयानक कहा जाता है। भक्ति के पांच प्रत्यक्ष दिव्य रस भक्त के हृदय में स्थायी रूप से स्थित रहते हैं, जबकि सात गौण भाव किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सहसा प्रकट होते हैं और अधिक प्रबल प्रतीत होते हैं। शांत भक्तों के उदाहरणों में नव योगेंद्र तथा चार कुमार आते हैं। दास्य भक्ति के भक्तों के उदाहरण असंख्य हैं, क्योंकि ऐसे भक्त सर्वत्र हैं। वृंदावन में सख्य भक्तों में श्री धामा तथा सुधामा, द्वारका में भीम तथा अर्जुन, वृंदावन में वात्सल्य प्रेमी भक्त माता यशोदा तथा पिता नंद महाराज और द्वारका में भगवान के माता पिता वसुदेव तथा देवकी हैं। अन्य गुरुजन भी वात्सल्य प्रेमी भक्त हैं। माधुर्य प्रेम में प्रमुख भक्त हैं वृंदावन की गोपियां, द्वारका की पटरानियां तथा वैकुंठ की लक्ष्मियां। इन भक्तों की संख्या अनंत है। कृष्ण रति दो प्रकार की है, पहली ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति तथा दूसरी ऐश्वर्य ज्ञान रहित शुद्ध रति केवला। ऐश्वर्य ज्ञान विहीन शुद्ध रति गोलोक वृंदावन में पाई जाती है। ऐश्वर्य तथा ज्ञान से युक्त रति मथुरा तथा द्वारका, इन दो पुरियों तथा वैकुंठ में पाई जाती है। ऐश्वर्य प्रधान होने पर भगवत प्रेम कुछ संकुचित हो जाता है, किंतु केवला भक्ति में भक्त कृष्ण की असीम शक्ति को देखते हुए भी अपने आप को उनके समान मानता है। शांत तथा दास्य रस के स्तर पर कभी कभी भगवान का ऐश्वर्य प्रमुख होता है, किंतु वात्सल्य, सख्य तथा माधुर्य रसों में ऐश्वर्य संकुचित हो जाता है। जब कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी के चरण कमलों की वंदना की तो दोनों के मनों में उनके ऐश्वर्य के ज्ञान के कारण भय तथा आदर उत्पन्न हुआ। जब देवकी तथा वसुदेव ने यह समझ लिया कि उन्हें प्रणाम करने वाले उनके दोनों पुत्र कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो वे भयभीत हो उठे और उन्होंने उनका आलिंगन नहीं किया। जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन भयभीत हो उठा और उसने मित्र रूप में कृष्ण के प्रति दिखलाई गई दृष्टता के लिए उनसे क्षमा मांगी। मैंने आपकी महिमा न जानने के कारण और आपको मित्र समझकर हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र कहकर संबोधित किया है। मैंने पागलपन या प्रेम में जो कुछ भी किया है कृपा करके उसके लिए क्षमा कर दे। मैंने एक ही बिस्तर में लेते हुए परिहास में साथ साथ बैठे या खाते हुए कभी अकेले में तो कभी अपने मित्रों के सामने कई बार आपका अनादर किया है। हे अच्युत, कृपया मेरे उन सारे अपराधों को क्षमा कर दे। यद्यपि कृष्ण महारानी रुक्मणी से परिहास कर रहे थे किंतु वे सोच रही थी कि कृष्ण उनका साथ छोड़ने वाले हैं जिससे उन्हें भय लगा। जब कृष्ण द्वारका में रुक्मणी से परिहास कर रहे थे तब वे दुख भय तथा शोक से संतप्त हो गई। उनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई थी। उन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां गिरा दी और जिस पंखे से भगवान को पंखा जल रही थी वह भी गिर गया। उनके बाल बिखर गए और वे सहसा बेहोश होकर गिर पड़ी मानो तेज हवा से केले का कोई वृक्ष गिर गया हो। केवला शुद्ध भक्ति की अवस्था में भक्त अनुभव करते हुए भी कृष्ण के असीम ऐश्वर्य को नहीं मानता। वह कृष्ण से अपने संबंध के विषय में ही गंभीरता से विचार करता है। जब माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह के भीतर सारे ब्रह्मांडों को देखा तो क्षण भर के लिए वे आश्चर्यचकित हो गई। तीनों वेदों के अनुयायियों द्वारा भगवान इंद्रदेव तथा अन्य देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। ऐसे अनुयायी भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। उपनिषदों के अध्ययन द्वारा उनकी महानता को जानकर ऋषिगण भगवान की पूजा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक जो ब्रह्मांड का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं उनको पुरुष के रूप में पूजते हैं। बड़े बड़े योगी उन्हें सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में तथा भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजते हैं। फिर भी माता यशोदा उन्हें अपने पुत्र के रूप में मानती थी। यद्यपि कृष्ण इंद्रिय अनुभूति से परे तथा मनुष्यों के लिए अप्रकट हैं, किंतु वे भौतिक शरीरधारी मनुष्य का वेश धारण करते हैं। इस तरह माता यशोदा ने उन्हें अपना पुत्र माना और ओखली से एक रस्सी द्वारा भगवान कृष्ण को बांध दिया मानो वे सामान्य बालक हों। जब कृष्ण श्री धामा से हार गए तो उन्हें श्री धामा को अपने कंधों पर ले जाना पड़ा। इसी तरह भद्रसेन ने वृषभ को तथा प्रलंब ने रोहिणी सुत बलराम को उठाया था। हे प्रियतम कृष्ण, आप मेरी पूजा कर रहे हो और उन सारी गोपियों का साथ छोड़ रहे हो जो आपके साथ आनंद भोगना चाहती हैं। ऐसा सोचती हुई श्रीमती राधा रानी ने अपने आप को कृष्ण की सर्वाधिक प्रिय गोपी मान लिया। उन्हें गर्व हो गया था और कृष्ण के साथ उन्होंने रास लीला छोड़ दी थी। उन्होंने गहन वन में कहा, हे प्रिय कृष्ण, अब मैं और अधिक नहीं चल सकती, आप जहां चाहो मुझे ले चलो। जब श्रीमती राधा रानी ने इस प्रकार से कृष्ण से याचना की तो कृष्ण ने कहा, तुम मेरे कंधों पर चढ़ जाओ। जो ही राधा रानी ऐसा करने लगी तो वे अदृश्य हो गए। तब श्रीमती राधा रानी अपनी प्रार्थना तथा कृष्ण के अदृश्य होने पर शोक करने लगी। हे कृष्ण, हम सब अपने पतियों, पुत्रों, परिवार, भाइयों तथा मित्रों के आदेश की अवहेलना करके उनका साथ छोड़कर आपके पास आई हैं। आप हमारी इच्छाओं के विषय में सब कुछ जानते हैं। हम तो आपकी परम संगीतमय बांसुरी से आकृष्ट होकर आई हैं, तो भी आप बहुत बड़े ठग हो। भला ऐसा कौन होगा जो इस तरह रात्रि के अंधकार में हम जैसी तरुणियों का साथ त्यागना चाहेगा। जब कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह लगा रहता है तब उसे क्षमता अवस्था प्राप्त होती है। क्षमता शब्द क्षम से निकला है, अतः शांत रस तटस्थ अवस्था का अर्थ है भगवान कृष्ण के चरणों में पूरी तरह लगे रहना। यह साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख से निकला निर्णय है। यह अवस्था आत्म साक्षात्कार कहलाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचन हैं, जब किसी की बुद्धि मेरे चरण कमलों में पूरी तरह संलग्न रहती है किंतु वह व्यक्ति किसी तरह की व्यवहारिक सेवा नहीं करता तो उसे शांत रति या शम अवस्था प्राप्त हुई रहती है। शांत रति के बिना कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। शम या शांत रस जब इसका सूचक है कि मनुष्य कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनुरक्त है। दम का अर्थ है इंद्रियों को वश में रखना और भगवान की सेवा से तनिक भी विचलित न होना। दुख को सहना तितिक्षा है और धृति का अर्थ जीव तथा उपस्थ जननेन्द्रियों को वश में रखना। जो शांत रस को प्राप्त होता है उसका कार्य है कि उन इच्छाओं का परित्याग करे जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। केवल कृष्ण भक्त ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह शांत रस भक्त कहलाता है। जब भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है तब वह न तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है न मोक्ष की। ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल हैं और भक्त इन्हें नरक के समान मानता है। शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुण प्रकट होते हैं, एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से विरक्ति तथा दूसरा कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्ति किसी वस्तु से नहीं डरता। भक्त के लिए स्वर्ग जाना, नरक में पहुंचना तथा भव बंधन से मुक्ति, ये सभी एक जैसे होते हैं। शांत रस के ये दोनों गुण सभी भक्तों के जीवन में व्याप्त रहते हैं। ये आकाश में शब्द के गुण के समान हैं। शब्द ध्वनि समस्त भौतिक तत्वों में पाई जाती है। यह शांत रस का स्वभाव है कि उसमें रंच मात्र भी ममता नहीं रहती। प्रत्युत निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान प्रमुख होता है। शांत रस के पद पर मनुष्य को केवल अपनी वैधानिक स्थिति का ही पता चल पाता है, किंतु जब वह दास्य रस के पद पर उन्नति करता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण ऐश्वर्य को अच्छी तरह से समझ पाता है। दास्य रस पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान संभ्रम तथा गौरव समेत प्रकट होता है। भगवान कृष्ण की सेवा करके दास्य रस भक्त भगवान को निरंतर सुख प्रदान करता है। शांत रस के गुण दास्य रस में भी पाए जाते हैं, किंतु इसमें सेवा जुड़ जाती है। इस तरह दास्य रस पद में शांत रस तथा दास्य रस दोनों के ही गुण रहते हैं। सख्य रस पद में शांत रस के गुण तथा दास्य रस की सेवा दोनों ही विद्यमान रहते हैं। सख्य पद पर दास्य रस के गुणों के साथ आदर युक्त भय के स्थान पर सख्य का विश्वास मिला रहता है। सख्य रस पद पर कभी भक्त भगवान की सेवा करता है तो कभी बदले में कृष्ण से अपनी सेवा करवाता है। क्रीड़ा युद्ध में ग्वाल बाल कभी कृष्ण के कंधों पर चढ़ जाते थे और कभी वे कृष्ण को अपने कंधों पर चढ़ा लेते थे। क्योंकि सख्य भाव में आत्मीयता प्रधान होती है, अतएव इसमें संभ्रम तथा गौरव आदर युक्त भय अनुपस्थित रहते हैं। अतएव सख्य रस में तीन रसों के गुण विद्यमान होते हैं। सख्य रस के पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्त कृष्ण के घनिष्ठ होते हैं और अपने आप को उन्हीं के समान मानते हैं। वात्सल्य प्रेम के पद पर शांत रस दास्य रस तथा सख्य रस के गुण पालन नामक सेवा में परिणत हो जाते हैं। सख्य प्रेम का सार है ममता घनिष्ठता, जिसमें दास्य रस की औपचारिकता तथा आदर का अभाव रहता है। अधिक घनिष्ठता का भाव होने से वक्त वात्सल्य रस में कार्य करते हुए भगवान को सामान्य रूप से दंड देता है और फटकारता है। वात्सल्य रस में भक्त अपने आप को भगवान का पालक समझता है। इस तरह भगवान पालन के पात्र रहते हैं, जैसा कि पुत्र होता है। अतएव यह रस शांत दास्य सख्य तथा वात्सल्य रस के चार गुणों से ओत प्रोत रहता है। यह अधिक दिव्य अमृत है। कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आध्यात्मिक आनंद के आदान प्रदान की तुलना जिसमें कृष्ण अपने भक्त के वश में रहते हैं, उस अमृत के सागर से की जाती है जिसमें भक्त तथा कृष्ण डुबकी लगाते हैं। यह उन विद्वानों का मत है जो कृष्ण के ऐश्वर्य का गुणगान करते हैं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को फिर से सादर नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको संपूर्ण स्नेह के साथ सैकड़ों हजारों बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप अपनी निजी लीलाओं से गोपियों को अमृत सागर में निमग्न कर देते हैं। आपके ऐश्वर्य के कारण भक्तगण सामान्यतया घोषित करते हैं कि आप उनकी भावनाओं द्वारा तदैव वशीभूत होते हैं। माधुर्य रस में कृष्ण के प्रति निष्ठा, उनकी सेवा, सख्य का असंकोच भाव तथा पालन की भावना, इन सब की घनिष्ठता की वृद्धि हो जाती है। माधुर्य रस में भक्त भगवान की सेवा में अपना शरीर अर्पित कर देता है। अतः इस रस में पांचों रसों के दिव्य गुण उपस्थित रहते हैं। आकाश आदि भौतिक तत्वों में सारे गुण एक के बाद एक विकसित होते जाते हैं। क्रमिक विकास द्वारा सर्वप्रथम एक गुण उत्पन्न होता है, फिर दो भौतिक गुण, तब तीन और चार गुण विकसित होते हैं और अंत में पृथ्वी में पांचों गुण पाए जाते हैं। इसी तरह माधुर्य रस में भक्तों के सारे भाव घुल मिल जाते हैं। इसका गाढ़ा स्वाद निश्चित रूप से अद्भुत होता है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह कह कर समाप्त किया, मैंने भक्ति रसों का सामान्य सर्वेक्षण ही प्रस्तुत किया है। इसे किस तरह समंजित किया जाए तथा विस्तारित किया जाए, इसके विषय में आप विचार कर सकते हैं। जब कोई निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तब उनका प्रेम हृदय के भीतर प्रकट होता है। अनजान होते हुए भी कृष्ण की कृपा से मनुष्य दिव्य प्रेम के सागर के बहुत दूर वाले तट तक पहुंच सकता है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी का आलिंगन किया। तब महाप्रभु ने बनारस शहर जाने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातः काल जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगे और वाराणसी बनारस के लिए प्रस्थान करने वाले थे, तब श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमलों में यह निवेदन किया, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी आपके साथ चलूं। विरह की तरंगों को सहन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। तुम वृंदावन के निकट आ चुके हो, अब तुम वहीं जाओ। बाद में तुम वृंदावन से बंगाल गौड़ देश होते हुए जगन्नाथपुरी जा सकते हो, वहां तुम पुनः मुझसे मिलोगे। रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक नाव में सवार हो गए। रूप गोस्वामी मूर्छित होकर उसी स्थान पर गिर पड़े। एक दाक्षिणात्य ब्राह्मण रूप गोस्वामी को अपने घर ले गया। तत्पश्चात दोनों भाई वृंदावन के लिए चल पड़े। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः वाराणसी आ पहुंचे, जहां शहर से बाहर आ रहे चंद्रशेखर से उनकी भेंट हुई। चंद्रशेखर ने स्वप्न में देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर आए हुए हैं, अतः प्रातः काल वे महाप्रभु का स्वागत करने के लिए शहर के बाहर चले आए थे। जब चंद्रशेखर शहर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्होंने महाप्रभु को सहसा आते देखा। वे उनके चरणों पर गिर पड़े और परम आनंदित होकर उन्हें अपने घर ले गए। तपन मिश्र ने भी वाराणसी में महाप्रभु के आगमन का समाचार सुना, तो वे चंद्रशेखर के घर उनसे मिलने गए। बातचीत के बाद उन्होंने महाप्रभु को अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ले गए और उन्हें भोजन कराया। चंद्रशेखर ने बलभद्र भट्टाचार्य को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराने के बाद तपन मिश्र ने महाप्रभु से एक अनुग्रह करने के लिए कहा और प्रार्थना की कि वे उन पर कृपा करें। तपन मिश्र ने कहा, आप जब तक वाराणसी में रुके तब तक कृपा करके मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का निमंत्रण न स्वीकार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि उन्हें वहां 5-7 दिन रुकना है, अतः वे कोई ऐसा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें मायावादी सन्यासी का हाथ हो। यह जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र के घर पर भोजन करना स्वीकार कर लिया। महाप्रभु ने चंद्रशेखर के घर को अपना निवास स्थान बना लिया। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने आकर महाप्रभु से भेंट की। महाप्रभु ने स्नेह वश उसे कृपा प्रदान की। यह सुनकर कि श्री चैतन्य महाप्रभु पधारे हैं, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय जातियों के सारे सम्मानित व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आए। इस तरह श्री रूप गोस्वामी पर अत्यधिक कृपा वृष्टि हुई। मैंने इन सारी कथाओं का संक्षेप में वर्णन किया है। जो भी इस कथा को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनता है वह अवश्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भगवत प्रेम विकसित करता है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करता हुआ श्री चैतन्य चरिता अमृत कह रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरिता अमृत मध्य लीला के 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु द्वारा प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी को भक्ति योग विषयक उपदेश का वर्णन हुआ है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे